نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم توحید کے مسائل کتاب کو آج باضابطہ طور پہ شروع کریں گے. ابھی تک جو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کیے وہ توحید اور عقیدے کے موضوع کو سمجھنے کے لیے اہم تھے, لیکن اس وقت جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید, اردو میں اس کا نام ہے توحید کے مسائل. اصل میں یہ ایک سیریز ہے تفہیم السنہ. تفہیم کہتے ہیں فہم حاصل کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا. محمد اقبال کیلانی صاحب کی یہ ایک سیریز ہے اور یہ اس سلسلے کی پہلی کتاب ہے. اس کتاب کو آپ کے اس کورس کے لیے چوز کرنے کی وجہ کیا ہے, یہ چیز آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. تو اس کی وجہ اس کتاب کا اسلوب ہے. عموماً جب کتابیں بازار میں ہمیں ملتی ہیں مختلف موضوعات پہ اور خاص طور پہ عقیدے اور سنت کے موضوع پہ, تو اس کے اندر اس کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ بات جو کی جائے اس کا ساتھ ہی ساتھ حوالہ بھی ہو. بعض دفعہ ایک بات کہی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ وضاحت میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اس کتاب کی خوبی کیا ہے کہ اس میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوئی ہے اور نیچے اس کا ترجمہ ہے, اور اس حدیث میں سے جو پوائنٹ نکلتا ہے اس کو مصنف نے ایک ہیڈنگ کے طور پہ لکھا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ آج آپ اس کتاب کو شروع کریں گے کہ اس میں کسی انسان کی کوئی بات نہیں ہے. حدیث کو اسی کے ٹیکس کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی نے اس بارے میں کیا کہا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جب یہ کتاب پوری ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں گے یا اس پہ ہم ایک بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن اس ساری تمہید سے انشاءاللہ آپ کے دل سے یہ خیال نکل جانا چاہیے جو کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ کون سی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں, کس کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اور عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ فقہ میں کس کی فقہ ہوگی, تو در حقیقت ہم نے اس کورس میں چار کتابوں کو چوز کیا ہے جو کسی ایک انسان کے لیے بنیادی ضرورت کی ہیں, اسی میں سے یہ ایک کتاب ہے. اور اس میں فقہ کس کی ہے؟ سنت کی. تفہیم السنہ ہے جس کو سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے سارے کاموں کو دیکھنے کا موقع مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے. تو شروع کرتے ہیں. کتاب کا صفحہ نمبر 95 ہے. اس سے پہلے مصنف نے اس موضوع پہ بہت ہی تفصیل سے گفتگو کی ہے. ترتیب میں تو یہ پہلے ہے لیکن میں نے سوچا کہ ہم پہلے اس کتاب کے باقاعدہ آغاز سے شروع کرتے ہیں اور جو باتیں رہ گئیں اس کو کتاب کے اینڈ پہ دیکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, آپ سب کو اس وقت اپنی خوش قسمتی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم دنیا کے سب سے خوبصورت موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. سب سے پیاری ذات, اس کے ایک ہونے کی بات. توحید پہ ہم بات کر چکے وحدہ سے. اللہ کی ذات ایک ہے, کل ہو اللہ ہو احد. دن میں کئی بار نمازوں میں ہم یہ سورت پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کے ایک ہونے کے کیا تقاضے ہیں اور اس کی کیا تفصیل ہے بہت مختصر اور جامع انداز میں اس کتاب میں انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی. شروع کرتے ہیں. نیت کے مسائل. کسی بھی حدیث کی کتاب کو جب آپ شروع کریں گے تو عموماً اس میں سب سے پہلا ٹاپک نیت کا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اگر نیت خالص نہیں ہوتی تو پھر ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں ہم اس کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک نہ جائیں. اس کو شروع کرتے وقت میں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی چند سیکنڈ دوں گی کہ ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لیں. ہم سب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم اپنے گھروں سے نکل کر کیوں آئے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی بات کو سمجھنے اور اس کی معرفت کو لے کر اس کے حکموں پہ چلنے کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی زیادہ خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے. اس کے علاوہ اگر کوئی نیت ہے ہماری یہاں آ کے بیٹھنے کی تو तो फिर समझ लीजिए कि आने के बाद भी कुछ मिलेगा नहीं। कुछ लोग ऐसे थे कि जो अल्लाह के नबी की महफिलों में आके बैठते भी थे, चले जाते थे उनको सिवाय तनकीद के और नक्स के और आपकी गलतियां चुनने के कुछ नहीं मिलता था। तो अल्लाह ना करे कि हम इल्म की महफिल से ऐसी ही गंदी चीज़ें लेके उठें कि जिससे हम दूसरे के लिए तो क्या अपने ही लिए नुकसान खड़ा कर दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी की उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हु से मिलती है। अन उमर इब्न अल खत्ताब कल समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रातिन यन्किहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह। तर्जमा क्या है हदीस का? आमाल का दारोमदार नियतों पर है। हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। लिहाजा जिस शख्स ने दुनिया हासिल करने की नियत से हिजरत की उसे दुनिया मिलेगी, और जिसने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की उसे औरत ही मिलेगी। पस मुहाजिर ने जिस मकसद के लिए हिजरत की उसी चीज़ के लिए समझी जाएगी। इसे बुखारी ने रिवायत किया। बहुत मुख्तसर हदीस है लेकिन एक इंसान की सारी ज़िंदगी का खुलासा है। हर इंसान जिस नीयत से कोई काम करेगा अल्लाह के हाँ वो वैसा ही लिखा जाएगा। अल्लाह के नबी के दौर में एक शख्स ने किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की। उस औरत का नाम इमराउल कैस था। सहाबे कराम में उस शख्स का नाम ही मुहाजिर इमराउल कैस पड़ गया कि इसने इस औरत के लिए हिजरत की। देखा जाए तो ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों से हिजरत करते हैं, बहुत कुछ छोड़ते हैं और बहुत कुछ अपनाते हैं। हमारा किसी काम को करने का जो असल मकसद होगा हमारे लिए वही अजर है। हिजरत का लफ्ज़ बहुत ही ज़्यादा वसीउल मानी है। इंशाल्लाह किसी मौके पे हम इसको देखेंगे, लेकिन इस वक्त हम सब के अमल के मुताबिक गुनाहों को छोड़ना भी हिजरत है। अगर हम सब इस कोर्स में बैठे हैं, इस कोर्स के लिए आए और यहाँ बैठ रहे हैं, तो एक नियत कर लीजिए आज ही कि अल्लाह मैंने इस मुख्तसर से वक्त में अपने गुनाहों से हिजरत करनी है, अपनी बुरी आदत को छोड़ना है, अपने अंदर से वो सारी नेगेटिव चीज़ें निकाल देनी है जो आज तक नहीं निकाल सकी। इंशाल्लाह जब ये नियत लेके आएंगे हर दिन के बाद अपना जायज़ा लेंगे कि मैंने अपने आप को कितना पाक किया, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अगली रिवायत हज़रत अबू उबैदा बिन उमर बिन अम्मार बिन जासिर रदी अल्लाहु अन्हो अपने बाप से रिवायत करते हैं कि अम्मार बिन जासिर रदी अल्लाहु अन्हो को मुशरिकों ने पकड़ लिया और उस वक्त तक ना छोड़ा यानी सज़ा देते रहे जब तक उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली ना दी और इनके माबूदों का भलाई से तذکرہ ना किया। जब हज़रत अम्मार रजी अल्लाहु अन्हो रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने पूछा क्या हुआ? अम्मार ने अर्ज़ किया बहुत बुरा हुआ ए अल्लाह के रसूल, मुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ा गया जब तक मैंने आपके बारे में ना ज़ेबा कलिमात ना कहे और इनके माबूदों की तारीफ़ ना की। आपने पूछा अपने दिल की क्या कैफियत महसूस करते हो? अम्मार ने अर्ज़ किया ईमान पर पूरी तरह मुतमईन है। तब आपने फरमाया अगर ये मुशरिक दोबारा ऐसा करें तो तू भी ऐसा ही करना। इसे बहकी ने रिवायत किया। ये एक वाक्या था जो अम्मार बिन जासिर के साथ पेश आया कि लोगों ने उनको मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनको अपनी जान बचाने के लिए अल्लाह के नबी के बारे में कुछ ऐसी बात कहना पड़ी जिसकी गवाही उनका दिल नहीं दे रहा था, और दिल में मलाल था कि ये मैंने क्या किया, जान बचा ली और अल्लाह के नबी के बारे में बात कर दी। चुनाचे मसला पूछने आपके पास आए तो आपने फिर उनको तसल्ली दी कि तेरे दिल में क्या था। और इस पे कुरान पाक की एक आयत भी है कि वमन उक्रिहहु वकल्बुहु मुतमइन्नु बिल ईमान, कि जिसको मजबूर कर दिया जाए हालांकि उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की पकड़ नहीं करेगा। इससे पता चलता है ना कि अल्लाह ताला की नज़र हमारे दिलों पे है। आमाल के अजर व सवाब का दारोमदार नियतों पर है। एक बंदा काम करता है, दूसरा बंदा भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है, लेकिन एक को उसके काम का बहुत अजर मिल जाए और दूसरे को कम मिले। मसलन हम सब यहाँ बैठे हैं, आज हम सब यहाँ आए, बज़ाहिर हम सब एक ही माहौल में बैठे हुए लोग हैं, लेकिन हमारे अजर मुख्तलिफ होंगे। कोई बहुत सारी मुश्किलों में से निकल के आया, किसी ने अपने बहुत सारे प्लान छोड़े, और कोई बिल्कुल घर में फारिग था और वो आ गया। कोई इतनी ज़्यादा तड़प लेकर आया कि उसको लगा कि बस मैंने तो वक्त से पहले पहुंचना है। किसी ने कहा कोई बात नहीं, अगर 10 बजे की बजाय 10:15 भी पहुंच गए तो खैर है। ये सारी छोटी छोटी तब्दीलियां हमारे आमाल को बदल देती हैं, हत्ता कि एक छत के नीचे बैठे हुए लोग भी कोई जन्नत में जाने के काबिल बन जाते हैं और कोई जहन्नम में जाने के। जितनी नीयत खालिस होगी उतना अल्लाह की तरफ से अजर ज़्यादा मिलेगा। तीसरी रिवायत इसी बाब की, अन अबी हुरैरा तकाल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم। حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی نیت اور اعمال کو دیکھتا ہے। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। इसी तरह अगली रिवायत हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हों से है, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से ये सुना कि जो शख्स रात को अपने बिस्तर पर इस नियत से लेटा कि उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेगा, लेकिन इसकी आँखों पर नींद इस कदर गालिब आ गई कि सुबह हो गई, तो उसे उसकी नियत का सवाब मिल जाएगा और उसकी नींद उसके रब की तरफ से इस पर सदका शुमार होगी। निसाई की रिवायत है। कितना प्यारा क्राइटेरियन मिल गया हमको, लेकिन फिर इसमें याद रखिए इखलास शर्त है। ये नहीं कि सारी रात जागते रहे और 2 बजे के करीब सोए और कहा अच्छा चलो मैं तहज्जुद पढ़ूंगी। जब आप सारा दिन नहीं सोते और रात 2 बजे तक जागते हैं तो बिस्तर पे लेटेंगे, फिर तो तहज्जुद तो दूर की बात है, आपकी तो फजर के लाले पड़ जाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह को पता है कौन किस नीयत से काम करता है, लेकिन अगर वाकई नीयत है और अल्लाह ने आपको सुला दिया, गम है दिल में, हसरत है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अजर मिलेगा। इस बात को सुनते हुए आपको अल्लाह ताला का कुर्ब महसूस हुआ? मुझे तो ऐसे लगा कि अल्लाह की ज़ात मेरे इतने करीब है। यही तो बात है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इंसान की शाहरख से भी करीब हैं। हमें पता है कि इंसान के दिल में वसवसे क्या उठते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने जो अपने बारे में ये बात कही ना कि वह इज़ा सअला का इबादी अन्नी फ इन्नी करीब, तो इस कुर्बत का ये भी एक अमली मुजाहरा है कि दिल में ख्याल आता है और अल्लाह को उसकी खबर होती है। और आप कभी आजमा के देखें, आजमाना चाहते हैं? आज रात सोने से पहले जब आप बिस्तर पे बैठें, अपनी जो भी आप काम करते हैं उस वक्त कोई एक ख़ास वक्त सोचें रात का। आजकल आपको पता है कि फजर इतनी जल्दी होती है, 3:15 बजे तो फजर शुरू होती है। आप कह के देखें अल्लाह ताला से कि अल्लाह आज मुझे 2:45 पे उठा देना। ऐसा ढूंढिए टाइम कि जो वाकई बिल्कुल अनयूजुअल हो, मिनट के साथ, कि बस अल्लाह ताला मैं आज 2:45 बजे उठ जाऊंगी और वज़ू करके तो नफिल पढ़ूंगी और फिर फजर पढ़ूंगी, आपने मुझे उठाना है। बस अब कोई अलार्म न लगाएं और आप सो जाएं। फिर कल शेयर कीजिएगा जिन्होंने ये तजुर्बा किया, करेंगे अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा इस बात को, ठीक है?